ये आकाशवाणी दिल्ली है। स्टार्टअप महाकुंभ कल से नई दिल्ली में भारत मंडपम में शुरू होगा और 20 मार्च तक चलेगा। निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद दिल्ली सहित देश भर में कल से आचार संहिता लागू कर दी गई है। प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली जल बोर्ड में अनियमितताओं से जुड़े धन शोधन मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को समन जारी कर कल पूछताछ के लिए बुलाया है। नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में महिला प्रीमियर लीग के फाइनल मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर का मुकाबला जारी और दिल्ली मेट्रो रेल निगम आज महिला प्रीमियर लीग फाइनल के समापन के बाद दर्शकों के सुचारू आवाजाही के लिए दिल्ली गेट मेट्रो स्टेशन पर अपनी सेवा रात 12:15 बजे तक जारी रखेगा। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं लवली निगम। स्टार्टअप महाकुंभ कल से नई दिल्ली में भारत मंडपम में शुरू होगा और 20 मार्च तक चलेगा। इस आयोजन में स्टार्टअप के अलग अलग पवेलियन होंगे। महाकुंभ में एआई, बी2बी, एग्रीटेक, डीप टेक, क्लाइमेट टेक, गेमिंग, ई स्पोर्ट्स, फिनटेक जैसे अनेक पवेलियन देखने को मिलेंगे। एक रिपोर्ट।
इस महाकुंभ का उद्देश्य पूंजीपतियों और निवेशकों को भारतीय व्यापार के साथ जोड़ना है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में डीपीआईआईटी के सचिव राजेश कुमार सिंह ने कहा कि ये एक अपनी तरह का पहला कार्यक्रम है जिसे राजधानी में बड़े पैमाने पर आयोजित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भारत तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र का देश है और इस सूची में प्रतिदिन बड़ी संख्या में स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र जुड़ रहे हैं। श्री सिंह ने कहा कि इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के शामिल होने की उम्मीद है। स्टार्टअप महाकुंभ में 2000 से अधिक स्टार्टअप, हजारों निवेशक, 30,000 भावी उद्यमी और विश्व स्तरीय प्रतिनिधि मंडल हिस्सा लेंगे। प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से प्राची प्रिया।
निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद कल से आचार संहिता लागू कर दी गई है। इसके मद्देनजर राजधानी के विभिन्न क्षेत्रों से पोस्टर, पर्चे, वॉल पेंटिंग और इस तरह के सभी प्रचारक सामग्रियों को हटाया जा रहा है। इसके अलावा निर्वाचन आयोग द्वारा आगामी चुनाव को लेकर मतदाता के बीच कई जागरूकता कार्यक्रम भी प्रसारित किए जा रहे हैं। आम चुनाव की घोषणा होने के एक दिन बाद पंजाब के पुलिस महानिदेशक गौरव यादव ने कहा है कि राज्य पुलिस स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। पुलिस महानिदेशक के साथ विशेष पुलिस महानिदेशक कानून और व्यवस्था अर्पित शुक्ल ने आज चंडीगढ़ से राज्य के सभी वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को ऑनलाइन संबोधित किया। पंजाब में लोकसभा चुनाव के लिए मतदान अंतिम चरण में 1 जून को होगा। एक रिपोर्ट।
राज्य भर में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और फील्ड अधिकारियों को पुलिस बल का ऑडिट करने के लिए कहा गया है। आम जनता के बीच विश्वास पैदा करने के साथ साथ संवेदनशील और अति संवेदनशील क्षेत्रों पर नजर रखने के लिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल CAPF की 25 कंपनियों को संवेदनशील जिलों में तैनात किया गया है। इनमें सीमा सुरक्षा बल BSF की 15 कंपनियां, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF और भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP की 5-5 कंपनियां शामिल है। असामाजिक तत्वों, अपराधियों और मादक पदार्थों की आवाजाही पर रोक लगाने के लिए अंतर्राज्यीय सीमाओं पर जांच तेज कर दी गई है। शिशु शर्मा शांतल, आकाशवाणी समाचार, जालंधर।
निर्वाचन आयोग ने सर्वोच्च न्यायालय की रजिस्ट्री से प्राप्त डिजिटल डाटा आज अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। ये डाटा निर्वाचन आयोग की वेबसाइट www.eci.gov.in/candidate-political-party पर देखा जा सकता है। निर्वाचन आयोग ने एक बयान में कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के अनुसार राजनीतिक दलों ने चुनावी बॉन्ड से संबंधित डाटा सीलबंद लिफाफे में दिया था और लिफाफे को खोले बिना इन्हें सर्वोच्च न्यायालय को सौंप दिया गया था। न्यायालय के 15 मार्च के निर्देश के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय की रजिस्ट्री ने यह डाटा सील कवर में फिजिकल माध्यम से और पेन ड्राइव में चुनाव आयोग को वापस कर दिया है। निर्वाचन आयोग ने दिव्यांग तीरंदाज और अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित शीतल देवी को राष्ट्रीय दिव्यांग आइकन घोषित किया है। कल दिल्ली में आयोजित भारतीय बधिर क्रिकेट संघ की टीम और दिल्ली तथा जिला क्रिकेट संघ की टीम के बीच आयोजित नुमाइशी मैच के बाद ये घोषणा की गई। निर्वाचन आयोग ने भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड के सौजन्य से ये मैच आयोजित किया था। इसका उद्देश्य मतदाताओं में शिक्षा और समावेश को बढ़ावा देना है। इस अवसर पर मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार और अन्य दो आयुक्त ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधु उपस्थित थे। इसी अवसर पर निर्वाचन आयोग ने दिव्यांग खिलाड़ियों और वरिष्ठ मतदाताओं के लिए मतदाता दिशा निर्देश पुस्तिका का भी विमोचन किया। इस पुस्तिका में ऐसे मतदाताओं के लिए विभिन्न प्रकार की सुविधाओं का उल्लेख है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। दिल्ली पुलिस ने आज ऑपरेशन मिलाप के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए एक 3 वर्षीय गुमशुदा बच्चे को उसके परिवार से मिलवाया। कोटला मुबारकपुर पुलिस थाने के पुलिसकर्मियों के अथक प्रयास के बाद टीम को लापता बच्चा राजधानी के पिलंजी क्षेत्र में मिला। पुलिस ने बताया कि बच्चे की पहचान उसके परिवार द्वारा की गई और उन्हें बच्चा सुरक्षित सौंप दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उनकी सरकार ने ग्रामीण बालिकाओं को कृषि ड्रोन दिए हैं ताकि समाज की यह धारणा टूटे कि महिलाएं ट्रैक्टर भी नहीं चला सकती। कल दिल्ली में इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में उन्होंने कहा कि नमो ड्रोन दीदी योजना के अंतर्गत महिला स्व सहायता समूहों को 1000 ड्रोन दिए गए हैं। श्री मोदी ने कहा कि सरकार उत्तरदायित्वपूर्ण कार्यों के लिए महिलाओं का चयन खासतौर से कर रही है ताकि वे आर्थिक और तकनीकी रूप से सशक्त हो सकें। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पिछले 10 वर्ष में शासन का एक बिल्कुल नया मॉडल विकसित किया है जिसमें सबसे वंचित लोगों को प्राथमिकता दी जा रही है। श्री मोदी ने कहा कि भले ही पूरी दुनिया अनिश्चितता के भंवर में फंसी हो लेकिन भारत तेज गति से विकास करना जारी रखेगा। उन्होंने कहा कि पूरा देश भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनते देखना चाहता है। श्री मोदी ने यह भी कहा कि वे खबरों में बने रहने के लिए नहीं बल्कि काम निर्धारित समय के भीतर कर गुजरने में विश्वास रखते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2014 से पहले देश में पंजीकृत स्टार्टअप की संख्या कुछ 100 ही थी लेकिन आज ये संख्या लगभग 1.25 लाख है। प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली जल बोर्ड में अनियमितताओं से जुड़े धन शोधन मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को समन जारी कर कल पूछताछ के लिए बुलाया है। श्री केजरीवाल को धन शोधन निवारण अधिनियम PMLA के तहत बयान दर्ज करने को भी कहा गया है। एक रिपोर्ट।
यह दूसरा मौका है जब श्री केजरीवाल को धनशोधन मामले में समन जारी किया गया है। दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े मामले में पूछताछ के लिए निदेशालय उन्हें पहले ही कई समन भेज चुका है। श्री केजरीवाल निदेशालय के 8 समन को गैर कानूनी कहकर टाल चुके हैं। निदेशालय ने आबकारी नीति मामले में 9वीं बार समन जारी कर 21 मार्च को पेश होने को कहा है। दिल्ली जल बोर्ड मामले में निदेशालय का आरोप है कि इस विभाग के एक अनुबंध में मिली रिश्वत की राशि आम आदमी पार्टी के चुनाव कोष में डाल दी गई थी। पिछले महीने निदेशालय ने श्री केजरीवाल के निजी सहायक विभव कुमार, राज्यसभा सांसद एनडी गुप्ता, बोर्ड के पूर्व सदस्य शलभ कुमार, चार्टर्ड अकाउंटेंट पंकज मंगल और कुछ अन्य लोगों के ठिकानों पर छापेमारी की थी। निदेशालय ने इस वर्ष जनवरी में इस मामले में मुख्य अभियंता जगदीश कुमार अरोड़ा और एक ठेकेदार अनिल कुमार अग्रवाल को गिरफ्तार किया था। समाचार कक्ष से जया भारती।
दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आज दिल्ली जल बोर्ड मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय द्वारा भेजे गए नए समन को सरकारी खजाने को खाली करने का एक प्रमाण बताया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली की जनता जल बोर्ड का सच जानती है और भारतीय जनता पार्टी इस बात को हमेशा से कहती रही है कि जल बोर्ड का घोटाला शराब घोटाले से भी बड़ा घोटाला है। वहीं दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने इस समन को झूठा करार दिया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार का यह कदम मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने की साजिश मात्र है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA केंद्रीय विश्वविद्यालयों में स्नातक पाठ्यक्रमों के प्रवेश परीक्षा CUET UG परीक्षा पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 15 मई से 31 मई के बीच आयोजित कराएगी। इस दौरान आम चुनाव के लिए मतदान की तिथि 20 मई और 25 मई भी है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष एम जगदीश कुमार ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि आवेदन की अंतिम तिथि 26 मार्च के बाद पंजीकृत छात्रों की संख्या और उनकी भौगोलिक स्थिति का पता चलेगा। उन्होंने कहा कि एनटीएस जानकारी और मतदान तिथियों के आधार पर सीयूईटी यूजी की परीक्षा की तिथियां 15 मई से 31 मई के बीच तय करेगा। आज देश के 23 राज्यों में आधारभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान आकलन परीक्षा आयोजित की गई। इसका आयोजन नवभारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत किया गया। शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि सभी 23 राज्यों के प्रत्येक जिले में आयोजित की गई इस परीक्षा में करीब 37 लाख शिक्षार्थी शामिल हुए। ये परीक्षा 3 विषयों के लिए होती है। इनमें शामिल है पाठन, लेखन और संख्या ज्ञान। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप ये परीक्षा क्षेत्रीय भाषाओं में आयोजित की जा रही है। इस बार चंडीगढ़, पुडुचेरी, लक्षद्वीप और गोवा इस परीक्षा के माध्यम से शत प्रतिशत साक्षरता की घोषणा कर सकते हैं। महिला प्रीमियर लीग क्रिकेट का फाइनल मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और दिल्ली कैपिटल्स के बीच नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जा रहा है। ताजा समाचार मिलने तक दिल्ली कैपिटल्स ने बिना किसी नुकसान के 52 रन बना लिए हैं। इससे पहले दिल्ली कैपिटल्स ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने शुक्रवार को हुए एलिमिनेटर मुकाबले में पिछली बार की विजेता मुंबई इंडियंस को हराकर फाइनल में जगह बनाई थी, जबकि दिल्ली कैपिटल्स अंक तालिका में शीर्ष पर होने के कारण सीधे फाइनल में पहुंच गई थी। दिल्ली मेट्रो रेल निगम आज महिला प्रीमियर लीग क्रिकेट फाइनल के समापन के बाद दर्शकों के सुचारू आवाजाही के लिए दिल्ली गेट मेट्रो स्टेशन पर अपनी सेवा रात 12:15 बजे तक जारी रखेगा। वायलट लाइन पर स्थित दिल्ली गेट स्टेशन अरुण जेटली स्टेडियम का निकटवर्ती मेट्रो स्टेशन है। दिल्ली मेट्रो ने बताया कि लोगों को यह सेवा टर्मिनल स्टेशनों तक उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही दिल्ली मेट्रो ने यह भी सुनिश्चित किया है कि मैच के समापन के आधार पर समय में और भी बदलाव किए जा सकते हैं। नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय M25 टेनिस टूर्नामेंट में भारत के रामकुमार रामनाथन ने अपने ही देश के करण सिंह को 6-2, 6-2 से हराकर सिंगल्स मुकाबला जीत लिया है। M25 टूर्नामेंटों में रामकुमार रामनाथन की यह लगातार चौथी जीत है। वहीं करण सिंह ने सेमीफाइनल में शीर्ष वरीयता प्राप्त डोस्कॉय को 6-3, 6-4 से हराकर फाइनल में प्रवेश किया था। कल डबल्स मुकाबले में विष्णुवर्धन और सिद्धांत मंडिया की जोड़ी ने खिताब जीता था। राजधानी में आज मौसम सामान्य रहा। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान सामान्य से 1 डिग्री कम रहते हुए 30.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं न्यूनतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस कम रहते हुए 11.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान आसमान साफ रहने की संभावना है। कल का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। राजधानी दिल्ली में पिछले कुछ दिनों से वायु गुणवत्ता का स्तर लगातार मध्यम श्रेणी में बना हुआ है। आज शाम 6 बजे के करीब केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार समग्र दिल्ली क्षेत्र में वायु गुणवत्ता सूचकांक 188 रिकॉर्ड किया गया। 0 से 50 के बीच वायु गुणवत्ता सूचकांक को अच्छा, 51 से 100 के बीच संतोषजनक और 101 से 200 के बीच मध्यम और 201 से 300 के बीच खराब माना जाता है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि अहमदाबाद के गुजरात विश्वविद्यालय में कल हुई हिंसा में 2 विदेशी छात्र घायल हुए हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि एक छात्र को प्रारंभिक उपचार के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अपराधियों के खिलाफ कड़े कदम उठा रही है। इस प्रकरण में विदेश मंत्रालय गुजरात सरकार के संपर्क में है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। स्टार्टअप महाकुंभ कल से नई दिल्ली में भारत मंडपम में शुरू होगा। ये 20 मार्च तक चलेगा। निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद दिल्ली सहित देश भर में कल से आचार संहिता लागू कर दी गई है। प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली जल बोर्ड में अनियमितताओं से जुड़े धन शोधन मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को समन जारी कर कल पूछताछ के लिए बुलाया है। नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में महिला प्रीमियर लीग के फाइनल मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स और रॉयल चैलेंजर्स के बीच मुकाबला जारी। और इस मैच के समापन के बाद दर्शकों के सुचारू आवाजाही के लिए दिल्ली मेट्रो रेल निगम दिल्ली गेट मेट्रो स्टेशन पर अपनी सेवा रात के 12:15 बजे तक जारी रखेगा। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।